ओम शांति। तो एक बार फिर से हम सबको परमात्म प्यार मिला, मिला सबको, पालना मिली। बाबा का स्वरूप बहुत ही आकर्षक रहता है ना, फट से आया फट से चला गया, देखते ही रह गए। आगे वालों को दृष्टि दी नहीं, दूर दूर वालों को देखे उड़ तो गए फटाफट। कैसा लगता है बाबा, कैसा लगता है माताओं को, हैं? बहुत प्यारा लगता है बाबा, बहुत प्यारा तो है ही, पर ये भी देखने में आता है कि वो हम सबको भी कितना प्यार करता है। ये बात ब्राह्मणों की फीलिंग से अभी जरा दूर है। जैसे सभी माताएं जानती हैं, जो बाप हैं वो जानते हैं लौकिक, क्या उनका हर बच्चे से बहुत प्यार होता है, चाहे उसका बच्चा लंगड़ा ही क्यों ना हो, माताएं प्यार करती हैं या हटा देती हैं गोद से, बताओ, करते हैं ना। बाबा भी हमारा मात पिता है, उसे बार बार कहना पड़ता है कि मेरा आखिरी बच्चे से भी बहुत अति 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 प्यार है, कहना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म है, लेकिन हमें रियलाइज होना चाहिए। और अगर हम उसके बच्चों के लिए कठिनाई पैदा करें जिससे वो प्यार करता है, तो क्या होगा, सोचो। अब किसी माँ का कोई बच्चा उसके लिए दूसरा कोई कठिनाई पैदा करे, तो माँ का उससे प्यार रहेगा? अगर हम भगवान के ऐसे बच्चों के लिए कठिनाई पैदा करें, तो बाबा का हमसे भी प्यार कम हो जाएगा। साकार में बाबा कहा करते थे, कुछ आत्माओं से दिल का प्यार, भाई पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाओ, कुमार सब आ जाओ यहाँ आ जाओ, कुछ आत्माओं से दिल का प्यार और कुछ से, साकार में बाबा कहते थे, कुछ से ऊपर ऊपर का दिखाने के लिए। तो बाबा सचमुच किन्हें बहुत प्यार करता है, जो जो उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो बोलो वो आज्ञा हो गई, और जो और कहना मानने में तो सारी दुनिया आ गई, कुछ बचा ही नहीं जो उसने न कहा, क्या वो श्रीमत जो सच्चे हैं, और झूठों से, झूठों से वो भी तो उसके बच्चे हैं, जब वो कहता है कि सबसे प्यार करता हूं, तो झूठों से भी करता है या नहीं, थोड़ा करता है, ऊपर ऊपर का करता है, सिर पे ऐसे ही हाथ फेर देता होगा। अच्छा, कल की पॉइंट्स जरा एक दृष्टि डाल ले, बोलो। पहली तो प्यार की थी, फिर संस्कारों का संस्कार करो, आखिर में तो कह दिया रोज करो अगले सीजन तक, केवल मारो नहीं जलाओ, रावण को जलाते हैं, मार के नहीं छोड़ देते, वैसे भी किसी की मृत्यु हो जाए तो छोड़ नहीं देते, जलाते हैं, नहीं तो डर रहता है भूत बन के वापिस ना आ जाए। और सकास की क्या बात कही, हम जो सकास दे रहे हैं वो आत्माओं को पहुंच रही है, लेकिन और पावरफुल पहुंचे तो दो बातें कही, उन पर शक्तिशाली किरणें डालो, निरंतर लगातार योग अग्नि स्वरूप हो जाए, योग अग्नि ज्वाला, ये दो चीजें लगातार लंबा समय, क्योंकि जितनी पावर हम में होगी उतनी ही तो दूर जाएगी। अगर हम में नहीं है तो हमारी सकास पास पास तक ही जाएगी और थोड़ा प्रभाव डालेगी ना। सीधी सी बात, जैसे बल्ब हमने 15 वाट का जला दिया, अभी सुना 9 वाट का भी आ गया है कोई, 9 वाट का जला दिया, 0 का जला दिया, पढ़ सकेंगे कितने दूर तक लाइट जाती है। हमारी भी सकास मान आत्मा की लाइट, किरणें, शक्तियां, प्योरिटी, शांति, ये उतनी ही दूर तक जाएगी, उतनी प्रभावशाली ढंग से जाएगी जितनी हम में योग की शक्ति होगी। इसलिए योग को अग्नि स्वरूप बनाना है। क्या है योग अग्नि? किसे जलाएगी? संस्कारों को जलाएगी। कल बाबा ने बहुत अच्छी बात कह दी, समय को समीप लाने की विधि है संस्कारों को जलाना। कितनी सुंदर बात है। मैं भी सोचता था समय को समीप लाएं कैसे, कोई ऐसी चीज तो नहीं पकड़ के ले आए। समय बड़ी सूक्ष्म है, उसकी एक गति है, लेकिन हम जैसे जैसे संपूर्ण बनेंगे समय समीप आएगा। हमें अपने संस्कारों को जलाना है। आज विशेष क्लास इस पे करेंगे। और ये बात सुनाओ, किसको याद है, किसी को जो अच्छी लगी हो सुनाओ। हाँ वो तो ठीक है, माताएं बोलो। सहयोग से जेब भर कर रखो, सहयोग के नोटों से। कौन है मालदार सब में इसमें? सहयोग के नोट किसके पास जाते हैं? हैं? सहयोग देते चलें। हम बड़े हैं, हम महान हैं, हम सहयोग देते चलें। सबको इस संसार में सहयोग की जरूरत पड़ती है, हमें भी और दूसरों को भी। जो दूसरों को समय पे सहयोग देते हैं उन्हें भी समय पर किसी न किसी का सहयोग मिल जाता है। और जो सहयोग नहीं देते, जो केवल स्वार्थ वाले हैं, केवल मैं, समय पर वो भी अकेले रह जाते हैं। ठीक है, यज्ञ सेवा के लिए क्या कहा मधुबन निवासियों को? प्यार किया ना बहुत, आप सब भी मधुबन निवासी हैं ना, आप तो एक दो मास के लिए भी तो मधुबन निवासी हैं ना आप। प्यार किया बहुत, क्या कहा, चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा कार्य करने वाला उसका भी पुण्य जमा होता है, फल भी मिलता है और बल भी मिलता है। ऐसा आपका चेहरा हो, ऐसा जीवन हो कि लगे हम बहुत भाग्यवान हैं। दूसरों को भी लगता है ना, दूसरों को बहुत लोग कहते हैं आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि दुनिया में बहुत झंझट है, यहाँ न कमाने की चिंता न खाने का गम, कहावत है, न कमाने की चिंता न खाने का गम, अपनी किस्मत पर नाज करते हैं हम, करते हैं है या नहीं? कोई चिंता नहीं, दाल महंगी हो गई या तेल महंगा, सब्जियां बहुत आसमान छू रही हैं उनके भाव, या मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा, कोई चिंता नहीं। और बाबा सब कार्य ठीक करता रहता है। देखो मिट्टी का तेल नहीं था, किचन में मिट्टी का तेल चाहता है ना, डीजल जलाना पड़ रहा, नीचे धुआं निकलता है, आंखें खराब होती हैं, लोगों को लगता डीजल भी खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे, सोलर चलते नहीं, लेकिन खत्म हुआ ही नहीं, चलता रहा। तो बाबा का कार्य ऐसा है, मैं बार बार सोचता हूँ बाबा को देखते हैं तो ये सच है कि प्रभु की लीला वही जाने, कुछ समझ में नहीं आता। मोटा मोटा ज्ञान हमें है बाबा कैसा है, लेकिन उसकी जो लीला है, उसका कर्म करने का तरीका, कौन उनकी नजरों में है ये वही जाने, किसको वो क्या दे रहा है ये वही जाने, है ना। हम तो उसका ऊपर ऊपर का स्वरूप देखते हैं ना। एक और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, सेवा स्थानों का वायुमंडल बदलो, सेवा स्थानों का वायुमंडल बदलने से क्या विश्व का वायुमंडल बदल जाएगा। बहुत गहरी बात है। अगर सेंटर वाले टीचर बहने और हम सब मधुबन वाले इस बात को समझ लें, सबसे बड़ा केंद्र तो मधुबन है ना, तीनों जगह यहाँ आकर सभी आत्माओं को बहुत कुछ मिलता है। मुझे बाबा की एक बहुत सुंदर बात याद रहती है, जो कभी मधुबन निवासियों से मिलते हुए बहुत समय पहले कही थी, कि जब मधुबन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा तो ये स्थान जादू की नगरी बन जाएगा। सोचो, कोई भी व्यर्थ संकल्प किसी के मन में भी यहाँ न हो तो यहाँ के वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे। यहाँ जो आएगा उसको लगेगा कहाँ गए, क्या हो गया। आते ही मैं आपको गीता की एक बात सुनाऊं, उससे इस बात को हम समझ सकते हैं। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, संकल्प नहीं है, ऐसा योगी संसार में सबसे अधिक कल्याणकारी है। अर्थात यही बात, जो पावरफुल योग की स्थिति में स्थित हैं, जो व्यर्थ से मुक्त हैं, उनके वाइब्रेशंस, उनकी किरणें इतनी ज्यादा फैलती हैं संसार में, उनसे संसार का कल्याण होता है। सोचो, मधुबन में हम यहाँ 300 कम से कम 100-150 आप सब इतने भाई बहने रहते हैं, सब योग में मगन रहने लगे, व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाए तो यहाँ से जग का कल्याण हो जाएगा ना। वही बात जो सकाश के लिए बाबा ने कही, कि सुख शांति किरणें उन्हें जा रही हैं, पर उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही हैं। ये पता लग जाए, लेकिन ये काम तभी संभव होगा जब ये काम ऐसे तो प्रैक्टिकल संभव नहीं हो रहा, क्योंकि व्यर्थ चलाने वाले बहुत लोग हैं, और व्यर्थ चलना ये व्यक्तिगत न चलना ये व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी है। लेकिन जब वैराग्य होगा, जब समय घंटी बजाने लगेगा तेज, जब सबको लगेगा कि गया समय, पूरा हो गया, कर लो जो करना, तब जरूर सेवा स्थान व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी सुन रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली और उसके ऊपर भविष्यवाणी है कि एक हफ्ते में ही बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। अब आएगा या नहीं आएगा वो तो, हफ्ता तो आ गया, देखेंगे। लेकिन दो बड़े बड़े डैम भी उधर ही हैं, उनसे जो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, वो अगर टूट जाते हैं तो भारत का आधे का महाविनाश। लेकिन अभी तो खैर वो समय नहीं है, पर डर तो पैदा होता रहेगा ना, एक हफ्ता लोगों का डर में बीतेगा। तो हम अपने अपने स्थानों को व्यर्थ से मुक्त बनाएं, स्वयं को व्यर्थ से मुक्त बनाएं। व्यर्थ की तो संसार में कोई कमी नहीं है, सागर है ये भी, लेकिन ये हरेक के अपने ऊपर है। हम लक्ष्य रख लें, हमें व्यर्थ सुनना नहीं है, तो आधा तो खत्म हो जाएगा। फिर संकल्प कर लें, हमें भी अपने संकल्पों को ठीक ठीक रखना है, और आधा खत्म हो जाएगा। ये संकल्प भी हमें बहुत मदद करते हैं। तो हमारी सेवाओं से पुण्य भी जमा होता है। बाबा ने कहा, मधुबन वाले इसको समझें या न समझें, बहुत पुण्य जमा हो रहा है। मैं यहाँ एक उदाहरण दिया था, हमने गुजरात में एक मंदिर देखा, शिव का मंदिर, जिसमें ऊपर छत नहीं है, छत कोई बना नहीं सका आज तक, गिर जाती है। शिवलिंग है लेटा हुआ, 10 फुट का कम से कम होगा, मंदिर काफी बड़ी जगह में है, तो जब हमने चारों ओर चक्कर लगाया तो आजकल चारों ओर देवी देवता रखते हैं ना, तो एक देवी थी मार्बल की बनी हुई सफेद, उसका एक हाथ ऐसे, तीन हाथ दिख रहे, एक में कुछ लिया हुआ, दो दूसरे में भी कुछ लिया हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या है भाई, थोड़े लाइट ज्यादा नहीं थी। तो वो जो भाई हमें दिखा रहा था उसने कहा देखो ये जो यहाँ है ये झाड़ू, इस हाथ में पानी का घड़ा, इस हाथ में वो किचरा रखने की सुपरी। तो हम लोग इतने हंसे कि देखो ये वो देवी है जिसने यज्ञ में सफाई की है, उसकी भी पूजा करा दी शिव बाबा ने, मेरे साथ तुम भी करा दिया नहीं, उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था कुछ भी, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा था ये कौन सी देवी है भाई, ना कोई नाम लिखा हुआ, और हाथ भी तीन दिख रहे हैं, तीन तो एक चौथा छुपा हुआ था, तीन तो कहीं होते नहीं है, क्या है? तो उसने बताया वो आता रहता है वहां देखने के लिए। ये यज्ञ सेवा का महत्व है, लेकिन यज्ञ सेवा जो निष्काम भाव से करते हैं, जो सच्चे दिल से करते हैं, जो समर्पित भाव से करते हैं, जो ड्यूटी समझ के नहीं घर समझ के करते हैं, उनका पुण्य फल बल ज्यादा होता है। ये सत्य है, अगर कोई सेवा सच्चे दिल से, सुख देने की भावना से, सबको संतुष्ट करने की इच्छा से करते हैं, तो ये सेवा उन्हें योगयुक्त बनाती है। और अगर कोई काम करते हैं अहम से, भाई मेरी ये ड्यूटी है, घड़ी देगी पांच बज गए चले हम, काम हुआ हो या ना हुआ अब तुम जानो, हमारा ड्यूटी पूरी हो गई, तो बाबा कहा करते थे ड्यूटी कौन करते हैं, तो ड्यूटी कौन करते हैं, नौकर। घर में थोड़ा ही कहा जाता है मेरी ड्यूटी, घर में भारत में परिवारों में ड्यूटी बटी होती है, मेरी ड्यूटी होती नहीं, घर घर माना अपना। तो ये बड़े रहस्य हैं, जहाँ निस्वार्थ सेवा हो रही हो, निष्काम भाव से सेवा हो रही हो, जहाँ सेवा करने के पीछे कुछ पाने की इच्छा न हो, नाम हो, मेरी महिमा हो जाए, मैंने बहुत अच्छा काम किया, दस लोग कहें तो सही, मैं भी कुछ हूँ, ये नहीं, सेवा भाव हो जाए। एक है सेवा करना, दूसरा है अपने अंदर सेवा भाव बढ़ाना। सभी माताएं ध्यान दें इस बात पर, सेवा भाव, भगवान के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, अपने भाग्य को सराहते हुए हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान ने अपने यज्ञ में हमें स्थान दिया है, छोटी बात नहीं है। आगे चल के हम सबको इसका बहुत महत्व समझ में आएगा, अब भी है, आप सब जानते ही हैं और सब समझते हैं, लेकिन उस महत्व में रहना बड़ा भाग्य है हमारा, ये कि निश्चिंत जीवन बाबा हमें देते हैं, यहाँ कोई चिंता नहीं रहती ना, आप सेवा में भी यहाँ आते हैं एक दो मास निश्चिंत रहते हैं ना, आपको साफ दिखता होगा वहाँ का समय हमारा और यहाँ का समय कैसे कैसे बीतता है, वहाँ कितने संकल्पों का जंजाल रहता है और यहाँ बहुत चीजों से मुक्त रहते हैं, साधनाओं के कितने अच्छे स्थान हैं, शांति कितनी है। मैं बाहर जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ बाहर घूमने भी चले गए तो क्या क्या है, कोई सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, आजकल व्हीकल्स ही बहुत है, आवाज बहुत है, सावधानी से चलना पड़ता है, पीछे से कोई टक्कर न लगा दे, आगे से न कोई आ जाए, और हमारे यहाँ हम तो उधर ज्ञान सरोवर में तो और भी शांति, कारे अपनी के अलावा और कोई जाती ही नहीं लगभग, तो कितने अच्छे स्थान है, सुरक्षा कितनी है, आप सब आए हैं, आपको चिंता तो नहीं है ना, हमारी अटैची रखी है कमरे में कोई चोरी न कर ले, प्राय चिंता नहीं है, होती भी नहीं है, कभी कभी कोई आ जाते हैं भगवान के लाल ऐसे, पर प्राय तो नहीं आते ना, तो कितना अच्छा जीवन है यहाँ, कपड़े धुल के मिल रहे हैं, फ्रेश हो के मिल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, अपने भाग्य को देखकर हम बहुत प्रसन्न हो जाएं। तो मधुवन निवासी बनना सचमुच चारों युगों में बहुत बड़ा भाग्य है। संस्कारों का संस्कार करना है। जरा गिन लें कौन कौन से होते हैं संस्कार, क्योंकि बहुतों को पता नहीं चलता हम इसका संस्कार करें कैसे। कोई ऐसी मोटी चीज तो नहीं ना कि आग में डालें, लो भाई जल जाओ खत्म। इधर बॉयलर जल रहे बहुत सारे डाल दिया है, मिठालाल डाल दिया और जल गए संस्कार। तो कौन कौन से संस्कार हैं बोलो, 10-20 संस्कार सुना दो फटाफट। आलस अलबेलापन, ज्यादा बोलने का संस्कार है, दुख देना, निंदा करना, ईर्ष्या करना, अब भाइयों का नंबर है, परचिंतन का संस्कार, प्रदर्शन का संस्कार, लड़ने झगड़ने का संस्कार, ज्यादा बोलने का संस्कार। अब कोच वाले बताएं, जिद करने का संस्कार, तंग करने का संस्कार, बोलो बोलो फटाफट। वो अलग अभ्यास संस्कार, इधर उधर देख के चलने का संस्कार, कुछ छोटी मोटी बातें भी करो ठीक कहा, जल्दीबाजी करने का संस्कार, समय को व्यर्थ करने का संस्कार, गपशप लगाने का संस्कार है। नहीं वो अलग चीजें हैं, वो विकार अलग, आदतें। देखो चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, दूसरों को तंग करने की आदत, किसी किसी में आदत होती है तंग करके चलना, थोड़ा चलेंगे भी तो कुछ कर देना, चिढ़ाने की आदत, बूढ़े होंगे उन्हें चिढ़ाएंगे घर में, चिढ़ाने की आदत, ज्यादा खाने की आदत, ये भी आदत है ना, संस्कार है। कोई कोई को ज्यादा खाने का संस्कार होता है। और बोलो, टीवी बहुत देखने का संस्कार, ज्यादा सोने का संस्कार, बहुत अच्छे अच्छे पता चले ना सबको भाई क्या क्या होता है। सब में सब तो नहीं होते, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा। मोबाइल बोलो, पूरा बोलो, मोबाइल पे सारा दिन बिजी रहने का संस्कार। एक भाई बाबा आया हुआ ना कल, मोबाइल से बात करता जा रहा, यहीं का था, उसे पास वाले कह रहे, सारे तो बैठे थे मीटिंग वाले, महारथी थे, अरे भाई मोबाइल पे बात ना करो। नहीं उसने नहीं माना, फिर आखिर वो उठ के दूसरी जगह गया, वहां करता ही रहा, उधर भगवान मुरली चला रहा है, उसकी मोबाइल से बात हो रही है। कितना प्यार है मोबाइल प्रेम। तो समय है ना हर चीज का बाबा, अब सोचो भगवान सामने बैठा हो और कोई अपनी बिजनेस की बात कर रहा हो मोबाइल पे, इसमें बाबा को कैसा लगेगा ये सोचने की बात नहीं, पर ये कैसा है, यानी उस चीज को हम वैल्यू नहीं दे रहे, उस चीज का हमें सुख नहीं मिल रहा जो हमारे सामने उपस्थित है, स्वयं भगवान बैठा है। हाँ माया तो है, ये साइंस के साधन माया भी है तो सुखदायी भी है। अभी मैंने सुना मोबाइल में ही सारे सब जगह पर लोग मुरली सुन सकते, मुझे पता नहीं क्या है, मैं ज्यादा मोबाइल स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, परंतु मुझे बताया एक ने, मैंने कल बताया कि बाबा आ रहे हैं, कईयों को बताया हमने भी, तो उसने कहा बड़ा अच्छा मेरे पास ये सिम है, तो उसने सारी मुरली वहीं सुन ली, का काम भी कर रहे हैं मुरली भी सुन रहे हैं, घरेलू काम, वो तो कान में लगा लिया ईयरफोन। तो कितना अच्छा सुखों का साधन भी है, क्लास भी सुन सकते हैं, सवेरे की मुरली सुन सकते हैं, यहाँ का कोई प्रोग्राम चल रहा है वो भी, अभी जैसे हम क्लास करा रहे वो भी सुन सकते हैं। तो साधन अच्छे भी हैं, लेकिन उनमें ही सारा दिन लगे रहना ये संस्कार गलत भी है। सवेरे का संस्कार सुनाओ क्या क्या होते हैं खराब सवेरे, छोटे छोटे बताओ जरा। 5 मिनट का संस्कार मालूम है, 5 मिनट क्या, 5 मिनट और सो लें, 5 मिनट और सो लें, वो तो फिर 5 बजाता है ना 5 मिनट पूरा, और लेट के ही योग कर लेंगे क्या है, और सोचो सवेरे सवेरे के कौन से संस्कार आत्मा को ढीला करते हैं। योग तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे उठ के, छोड़ो। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, वहां भी तो सब सोए होते हैं ना क्लास में, यहीं सो जाते हैं। एक भाई मुझे कह रहा है नीचे शांति बन, तुम आके कमेंट्री से योग कराओ ना यहाँ सवेरे। अरे मैंने कहा भाई मुझे कोई कहे तो मैं कराऊ ना। कहा हम तो जाते नहीं योग में, क्यों, सारे ही सो जाते हैं वहां तो। अरे स्टेज पे बैठे भी सो जाते हैं तो क्या योग लगेगा। ये देखो तो सवेरे के भी बहुत सारे माया है, संस्कार है, व्यर्थ चिंतन है। हम इन सब को चेक करें, कोई अनुमान लगाने का संस्कार है या ज्यादा सोचने का संस्कार है, दुख लेने का संस्कार है, निगेटिव देखने का संस्कार है। बहुत लोग निगेटिव देखते हैं, आनंद हो रहा है। परसों नीचे आप सब गए होंगे ना, डायमंड प्लेटिनम जुबली मनाई थी ना, बहनों को बहुत ऊपर बैठा था, एक दो लोग हमारे पास बैठे, इसको यहाँ क्यों बैठा है, देखा उसको वहां बैठा, इसको यहाँ बैठा दिया। अरे मैंने कहा सुख लो ना, तुम आनंद छाया हुआ है, तुम परेशान हो रहे हो। सब आनंदित हो रहे हैं तो 50-100 लोग ऐसे भी होंगे जो परेशान, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। तो खुद ही परेशान रहने का संस्कार, निगेटिव सोचने और देखने का संस्कार, इसे बैठा दिया ऊपर है। इनकी तो कोई स्थिति नहीं, देखा इन्हें भी ऊपर बैठा दिया। अभी भगवान मान दे रहा है। मैं हमेशा सोचता हूँ, देखो हमारी बहनें, मान लो थोड़ी देर के लिए उनकी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है, सोचो आप अब से 50 साल पहले जब भगवान को एक एक आत्मा की जरूरत पड़ी थी, एक एक आत्मा को निकालना अत्यंत कठिन काम था, तब ग्लानी के सिवाय, लड़ाई झगड़े के सिवाय, ब्रह्मा कुमारियों की इंसल्ट करना, आलोचना करना, इसके सिवाय कुछ नहीं था। उस समय किसी ने अपना जीवन समर्पित किया, सोचो पवित्र जीवन जीने का व्रत ले लिया, संसार की सभी चीजें छोड़ के सफेद साड़ी पहन ली, छोटी बात है, बोलो माताएं बताओ, छोटी बात तो नहीं है ना। हम उनकी स्थिति देख लेते हैं, अरे ये बहन गुस्सा बहुत करती है, देखा 50 साल हो गए अभी भी गुस्सा करती है, लेकिन उनकी मान्यताएं उससे बहुत ज्यादा है। तो निगेटिव देखने का संस्कार ये आत्मा को आनंदित नहीं रहने देता। बहुत सुंदर धारणा है जीवन की, हर सीन का आनंद लें, जो कुछ हो रहा है उसका आनंद लें। आप बाबा को देखते देखते ही होंगे आप ध्यान से, कल तो और नजदीक से देखा सभी ने, कैसे न्यारा और प्यारा है। सब गीत गा रहे और बाबा को देखते हैं, आप ध्यान से देखा होगा, हम भी देख रहे थे कि सब गीत गा रहे हैं और बाबा, देखना है अच्छी तरह, पता चलता है भगवान क्या है, कहीं बंधन नहीं उसको, कहीं आसक्त नहीं वो, उसको पता है जो स्टेज पे बैठे वो गीत गा रहे, लेकिन नीचे वाले हो सकता उनसे ज्यादा गा रहे हो, संभव है ना, मन के गीत गा रहे हो, प्यार के वाइब्रेशंस भेज रहे हो, कईयों ने बाबा को अपने दिल में समा के रखा हो, उन्होंने बाबा के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी की हो। कई माताएं होती हैं साधारण, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ के चल देती हैं, गाली खाती हैं, तो ये बहुत बड़ा त्याग हो गया ना। देखने वाले कहेंगे माता बिना पढ़ी लिखी ये क्या काम की, कह देंगे ना ऐसे, लेकिन हम पॉजिटिव कौन अपनाए। ये संस्कार बहुत सुंदर है। बाबा के बाबा क्यों प्यार करता है सबको, इस कारण सबकी मान्यताएं उसके सामने स्पष्ट रहती हैं। कितने बड़े त्यागी हैं उसके बच्चे जिन्होंने संसार की सब चीजों से मुंह फेर लिया ना, पवित्रता अपना ली, कितनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। सब जानते हैं जो दुनिया में रहे हैं, कपड़े पहनने के लिए ही माताएं क्या क्या खरीदती है बाजारों में जाके, कितना खर्च करती हैं, कितना टाइम लगाती हैं। और जिन्होंने एक सा जीवन अपना लिया हो, विदेशी लोग आते हैं ना हमारे यहाँ, विदेशों में क्या है, सब कुछ बदल देना चाहिए, काम कर रहे हैं, हमसे पूछा करते हैं तुम इतने साल हो गए किचन में ही हो अब तक, बड़े आश्चर्य से पूछते हैं। मैंने कहा हाँ भाई किचन में ही है, हम लोग तो चेंज भी करना नहीं चाहते। उन्हीं लोगों का मुंह देखते हो रोज, मुंह भी देखो। मैंने कहा हम तो मुंह देखते ही नहीं, आत्मा को देखते हैं। वो सोचते हैं ये तो कुछ अजब सी बात हो गई, कितना बड़ा उन्हें लगता है कि ये लोग यहीं रह रहे हो, तुम मधुबन में यहीं 40 साल से यहीं रहते हो। हम कहते हैं हमें यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती भाई, क्या करें। बहुत सारे विदेश, बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्रीज में उनको एक ही जगह काम करना, एक ही जगह रहना, एक ही पत्नी के साथ रहना, पत्नी को एक ही पति के साथ रहना, भाता नहीं बदलो, जानती है ना माता, जानती हूँ सब बदलो, बदलते हैं वहाँ। इसी को आधुनिक लाइफ कहते हैं। अरे एक के साथ रह रहे हो तुम इतना 20 साल हो गए, छोड़ो डाइवोर्स करो, दूसरी शादी करो। और हमारी भारतीय कल्चर कितनी महान है, तो बाबा ये सब देखता है ना, कितने महान है मेरे बच्चे, इसलिए सबको बहुत प्यार करता है। तो संस्कारों को ले लें और संस्कारों को बदलने का तरीका अपनाएं। केवल बदलना है, मारना है और जलाना है, बहुतों की तो समझ में नहीं आता मारना क्या और जलाना क्या। योग अग्नि जितनी तेज होती है, कल की मुंडली में भी है, योग जितना ज्वाला स्वरूप होता जाता है संस्कार जलते जाते हैं। ये काम स्वतः ही होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक संकल्प रखना है मेरे पास ये गलत संस्कार है इसको जलाना है, फिर हमें योग करना है पावरफुल, वो संस्कार जलता जाएगा। दूसरी विधि, हम अपने देव संस्कारों को याद किया करें, देव स्वरूप हमारा, ये सबसे सुंदर और सरल तरीका है। मालूम है माताओं को कितने साल देवता थी आप, बोलो। तीसरी माता बोले कितने साल देवता थी आप, 2.5 साल। माता जी को पता नहीं भाई, बोलो बोलो पता है। हाँ इससे पीछे वाली बोलो कितने साल देवता रही आप। नहीं माताओं को पता नहीं ना, कोई 50 साल रही है, कोई 100 साल देवता थे। माताएं कितने साल थी देवता हैं, 5 साल। देखो माताएं कितनी होशियार है, देखते जाओ भाई। 25 साल, 2500 साल, 2500 साल। कौन कौन माताएं थी देवी देवता 2500 साल, हाथ उठाओ जरा। अच्छा कुछ नहीं थी, उन्होंने नहीं हाथ उठाया। 2500 साल देवता थे हम सब, पता है ना सभी माताओं को। तो देव संस्कार हमारे अंदर बहुत ज्यादा मजबूती से समाये हुए हैं, देव संस्कार। 2500 साल देवता रहे ना, थोड़े दिन नहीं, 2500 साल के तो बहुत स्ट्रांग संस्कार हो जाते हैं, मजबूत, वो हमारे अंदर हैं। ये कोई भी बुरा संस्कार, 2 युग हमारे पास नहीं था, न विकार थे न संस्कार थे। अगर हम अपने देव स्वरूप को सामने लाएंगे, मैं ये हूं, तो वो संस्कार आ जाएंगे, ये खत्म होते जाएंगे। बाबा ने जिस तरह अपने भविष्य स्वरूप का आनंद लिया, पता है आनंद लिया, बहुत नशा था बाबा को, कल परसों भी था ना, मैं नारायण को बहुत प्यार करता था बचपन से, पता नहीं था कि ये मैं ही बनने वाला हूँ। बहुत आनंद लिया बाबा ने, जीवन मुक्ति का आनंद यही लिया। जीवन मुक्ति का आनंद, जीवन मुक्ति में तो पता नहीं चलेगा ना, सुख इतना है कि सुख का पता नहीं है, होगा ना सतयुग में ये, इतना ज्यादा सुख। कोई दुखी हो तो पता चले ना हम बहुत सुखी हैं, पर सुख इतना ज्यादा है कि सुख की भी अविद्या हो जाती है। तो यहीं पर जीवन मुक्ति का सुख, आनंद, खुशी बाबा ने प्राप्त की, हम सब भी, मामा ने प्राप्त की, औरों ने प्राप्त की, हम भी थोड़ा थोड़ा करते हैं, इसको बढ़ाना है। हमारा देव स्वरूप सामने आए, तो चार बार भी दिन में मैं देव कुल की ये महान आत्मा हूँ, रॉयल आत्मा हूँ, सिर पर ताज। हम में से कितनों के ही सिर पर अनेक बार ताज आया होगा ना? 5000 साल में कितने राजा रानी हुए हैं, त्रेता के अंत तक ही 16108 को राज मिल जाता है। तो हम देव कुल की महान आत्माएं, रॉयल आत्माएं हैं, अपने सामने वो स्वरूप लाए। तीसरी बात, अपने किसी भी कड़े संस्कार पर कड़ी नजर रख दे, मुझे ये बदलना है। मान लो सवेरे का छोटी सी बात, इच्छा होती है 5 मिनट और सो ले, चेंज कर दें इसको, ये नहीं सोचना है। हाँ खुली 5 मिनट है तो आज से सोचेंगे 5 मिनट ज्यादा योग करेंगे आज। तो संकल्प चेंज होने से संस्कार चेंज हो जाएगा। तो अपने संकल्पों को चेंज करना है। ज्यादा बोलने की आदत है, मनु सोचता है ज्यादा बोलना अच्छा है, ये तो बुद्धू हैं जो चुप रहते हैं, ज्यादा बोलने से तो पता चलेगा ना हम क्या है। लेकिन ज्यादा बोलना कम बुद्धि का लक्षण है, चुप रहना बुद्धिमान की पहचान है, गंभीर व्यक्ति, विचारवान व्यक्ति की पहचान है। हम समझ ले इन बातों को, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर समझ हमारे पास हो कि मेरा ये संस्कार गलत है। देखो बच्चे जिद करते हैं, वो समझते हैं जिद करना बहुत अच्छा, तभी तो मम्मी देगी, नहीं तो मम्मी ये चीज देगी नहीं, जिद कर लेते हैं। तो अपने किसी भी गलत संस्कार को राइट मानना ये गलती हो जाती है। भाई किसी को हम दुख दे रहे हैं, सोच रहे इसने भी तो हमें दुख दिया इसलिए हमें भी देना है, इसको राइट मानना ये गलत हो गया। उसने हमें दुख दिया है, हमें क्षमा कर देना है क्योंकि हम बड़े हैं। तो हरेक अपने अपने ऐसे 3 या 5 संस्कारों पर ध्यान दें, जिनको हमें इस 6 मास में बदलना है। और बाबा बहुत खुश होगा हम अपने एक उस संस्कार को बदल दें जो लंबा काल जीवन में चलता रहा है। बहुतों के जीवन में एक संस्कार आदि से अंत तक चलता रहता है, देख सकते हैं आप, बहुत सारे गुण आ जाएंगे, वो एक संस्कार चलता ही रहेगा। उस पे ध्यान देंगे, उसको संकल्प चेंज करके चेंज करेंगे तो इससे हमारी उन्नति बहुत होगी। तो ये बाबा की बहुत गुहे गुहे बात हमने सुनी, संस्कार ठीक करेंगे तो समय समीप आ जाएगा, पुण्य का खाता हमें निरंतर बढ़ाते चलना है। बाबा ने तो कहा रोज संस्कार का संस्कार करो, तो ये काम तो संभव नहीं है। मैं सोच रहा था बाबा को तो लगता होगा ये देवकुल की आत्माएं क्यों नहीं समझ रही हैं, एक एक संस्कार को लिए बैठी है, क्यों नहीं समझ रही, इनके पास बहुत शक्ति है, संकल्प करें और काम हो जाएगा। संकल्प दृढ़ करें, संस्कार बदलने लगेंगे। हम संकल्प कर लें आज से मुझे किसी को बुरा नहीं बोलना है, फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा तेजी से। साथ में पावरफुल योग, पावरफुल योग किसे कहते हैं बोलो? हाँ ठीक है, किसी की भी याद ना आए, तो किसकी याद आए? देखो आत्मिक स्वरूप मैं स्वराज्य अधिकारी और बाबा, इसके अलावा कुछ दिखाई न दे। लंबा समय थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट इसको बढ़ाएं, इसमें समय भी बहुत तेजी से व्यतीत हो जाएगा और पावरफुल फीलिंग्स रहेंगी। चाहे बाबा की किरणें हमें मिल रही हैं, एक संकल्प में स्वयं को स्थित कर दें, एक ही संकल्प। हम बाबा के स्वरूप पर दृष्टि रखे हुए हैं, हमने अपनी बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर कर दिया है, वही दिख रहा है। कुछ देर तक ये हो गया एक संकल्प में स्थित होना, ज्वाला स्वरूप स्थिति, अग्नि योग, अग्नि, अग्नि स्वरूप। इसको थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो इससे संस्कार तेजी से जलने लगेंगे, क्योंकि संस्कारों का संबंध पाप कर्मों से है, पूर्व जन्मों के। पाप भी जलेंगे तो उससे जुड़े हुए संस्कार भी जलेंगे। जिसने जिस तरह के पाप किए हैं पूर्व जन्मों में, उसी तरह के संस्कार उसके अंदर हैं। तो हम इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। तो कल सवेरे से, पिछली बार हमने 6 मास का एक छोटा सा प्रोग्राम दिया था बाबा की मूल्यों के आधार पर, जिसमें बाबा क्या देखना चाहते हैं हमें, स्वराज्य अधिकारी, समय और संकल्प का महत्व, सकास देना, नो टेंशन, जो बाबा की मूल्यां चल रही थी ना तब, जो बहुत सारी चली, ऐसा आप अपना एक प्रोग्राम लेकर चलेंगे तो 6 मास बहुत सुंदर स्थिति में बीतेंगे, बिताने हैं। देखो बाबा ने तुरंत हमें फल दे दिया ना, जल्दी आ गए। कितने दिनों के बाद आ गए बाबा? 13 दिन के बाद ही आ गए ना सर। कौन सी तारीख को आए थे? 31। हाँ, कितनी जल्दी आ गए, 15 से पहले आ गए। तो और जल्दी आ जाएंगे, रोज आ जाएंगे हमारे पास, रोज रोज सवेरे एक बार सबको ऐसी बाबा के मिलन की, सुख की अनुभूति होनी चाहिए। ओम शांति।
अंतर आत्मा को शांति से भ
सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठेंगे राजा बनकर। मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा भकुति सिंहासन पर विराजमान, मुझसे चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। मैं इस देह की मालिक, मन बुद्धि की मालिक हूँ। मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं। मैं हूँ मास्टर ज्ञान सूर्य। परम धाम में शिव ज्ञान सूर्य, उनकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। सर्वशक्तिवान की ये शक्तियों की किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। ऊपर से मानो शक्तियों की बरसात हो रही है। ज्ञान सूर्य आंखों के सामने उनसे निकली हुई रंग बिरंगी किरणें सामने से चेहरे पर पड़ रही हैं, आत्मा में समा रही हैं। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, इस छत्र के नीचे बैठ जाएं और अनुभव करें उनकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समा रही हैं।